نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت ہے ہمارے شامل حال رومیوں کی طرف جانے کی تیاری. چلیے آج کنٹینیو کرتے ہیں آگے اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کے کسی امتحان میں اگر ڈالے تو اس میں پورا اتارے. شروع کریں گے. رحیکم مختوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ایکسٹریکٹ ہے کہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزوہ تبوک کس طرح ایمان اور نفاق کے بیچ میں ایک ایسی حد فاصل بنتا ہے کہ وہ لوگ جو صرف دعوے نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اپنے لیے ہمیشہ دی بیسٹ یعنی سب سے بہتر سے بہترین کی کوشش کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی کام کا ارادہ کیا آپ کے ساتھ قدم بڑھا کر چلنے والے صحابہ کرام تھے. کیسے وہ بہت زیادہ محبت کے دعوے کیے بغیر عمل کی شہادتیں قائم کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ آج کے مسلمان کو بھی ایسا کرے اور جب عمل کا وقت آئے تو ہم اس میں سب سے آگے ہوں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلامی لشکر تبوک میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا فیصلہ سنایا کہ جو بظاہر اگر عقل سے پوچھا جائے افس اینڈ برٹس میں پڑھا جائے یا آپ کہہ لیجئے کہ ایسی سوچ رکھی جائے کہ جس کو ایک عام انسان کی سوچ کہتے ہیں تو وہ بات سمجھ میں آنے کی نہیں تھی. لیکن صحابہ کرام کو اللہ کے نبی اور اللہ کے وعدوں پہ اتنا یقین تھا اور آپ کی لیڈرشپ میں وہ اتنے مطمئن تھے کہ وہ یہ سوچ لیا کرتے تھے ایسے وقتوں میں کہ ہم اس حکمت کو پا ہی نہیں رہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ رہی تھی. آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا معاملہ ہوا. ہم پیج 584 سے شروع کریں گے. پیچھے ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے دل کھول کر اللہ کے راستے میں مال دیا اور اب دیکھیں گے کہ آگے صحابہ کی کیا قربانیاں تھیں. اور یہاں آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ صدقہ دینے والے کس خوبصورت طریقے سے جو ہاتھ میں تھا لے آئے، نہ شرمائے کہ تھوڑا ہے اور نہ اکڑے کہ بہت زیادہ دے رہے ہیں، نہ دکھا دکھا کر دیا اور نہ چھپا چھپا کر دیا. اسلامک لشکر تبوک کی راہ میں اس دھوم دھام جوش و خروش اور بھاگ دوڑ کے نتیجے میں لشکر تیار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو اور بعض کہتے کہ سبا بن ارفتا کو مدینہ کا گورنر بنایا اور حضرت علی بن ابی طالب کو اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ ہی میں رہنے دیا. لیکن منافقین نے ان پر تانہ زنی کی اس لیے وہ مدینہ سے نکل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا لاحق ہوئے. لیکن آپ نے انہیں پھر مدینہ واپس کر دیا اور فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ سے ہارون علیہ السلام کو تھی؟ ہاں البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. یہاں بھی عمل کی بات نوٹ کیجئے گا کہ صحابہ جوش خروش سے بھاگ دوڑ سے نکلے کدھر جا رہے تھے؟ دین کے تقاضوں کو نبھانے. تو انصار اللہ میں جب تک جوش و خروش نہیں ہوگا اور بھاگ دوڑ کرنے کا ارادہ نہیں ہوگا یاد رکھیے یہ فتوحات نہیں ہوں گی. آج کی تو بہت بڑی تبوک ہے، کل کی تو بہت چھوٹی سی تھی. جب مسلمان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے نا پھر اس کے بعد وہ کسی چیز سے کو بھی راستے میں نہیں لاتا. اور اگر روئے دھوئے ڈھیلے ڈھالے دیکھتے ہیں سوچتے ہیں لیٹ می تھنک آئی ول لیٹ یو نو، نہیں، ایک جملہ لکھ لیجئے، صحابہ کرام دین کے مطابق خود کو چلاتے تھے، ہم اپنے مطابق دین کو چلاتے ہیں. وہ دین کے راستے کی ضرورتوں اور اس وقت کی نیڈ آف دی آور کو دیکھ کے نکل پڑتے تھے. ہم پہلے اپنے اسکیڈول سیٹ کرتے ہیں، اٹ ڈزنٹ سوٹس می، آج نہیں، کل، کل نہیں. صحابہ نے یہ ڈیلی ڈیلی سیکھی ہی نہیں تھی. اور ایسا ہی گروہ ہمیشہ کامیاب ہوگا، یہ لکھ کے رکھ لیجئے گا. اور پھر اسی طرح یا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے پیچھے کسی کو نامینیٹ کرنا چاہیے. پھر حضرت علی کو پیچھے چھوڑا کیونکہ خاندان تھا، اس سے ٹیک کیئرر بھی پیچھے تھے. لیکن جب منافقوں نے تانے دی، اس کو نوٹ کیجئے، ایک ہی چیز ہے جس کو اللہ کے نبی کسی اور طرح دیکھ رہے ہیں لیکن نفاق والے دلوں نے اس کو کسی اور طرح سنا اور حضرت علی ان باتوں کو سن کر نکل پڑے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی انسان باتیں نہیں سننا چاہتا. اور وہ بزدل بھی نہیں تھے، بہادر تھے. تو انہوں نے اللہ کے نبی کی یہ بات پھر مان لی کہ آپ جائیے. آج آپ سوچیے اگر آپ کی ڈیوٹی بدل دی جائے، آپ کو عین وقت پہ ایک نوٹس دیا جائے ادھر نہیں ادھر، تو ہم کتنا برا مانیں؟ اللہ ماشاء اللہ، اتنا تزکیہ اور اتنی تربیت ہو جائے کہ لب بھائی यस, समय ना बात आना, ऐसा ही ग्रो फिर आगे बढ़ता है और वही लोग जीतते हैं। हम अपने बच्चों को अपने साथ मिलाकर देख लें, बहुत सारी चीज़ें बच्चों को नहीं पता होती जो हमें पता होती हैं। और बच्चा आगे से अगर बहस करे, शक करे, आप पे इल्ज़ाम लगाए, तो आप कहेंगे बेटा बड़े हो गए तो समझ जाओगे। और आज बड़े होकर हम सबको समझ आ चुका है कि हमारे साथ हमारे माँ बाप ने अगर कोई सख्ती की या कोई हमारी बात नहीं मानी तो उसमें कितनी बड़ी खैर थी। और अल्लाह ताला हमें आज भी ऐसा ही बेहतरीन मुतबे बना दे। और फिर हज़रत अली चले गए। ऐसे लगता है कि सहाबा की कोई मर्जी ही नहीं थी, कोई उनके अंदर रिजेंटमेंट नहीं थी, कोई कुछ नहीं, सब कुछ था, इंसान थे, लेकिन नबी की तरबियत और दीन के काम करने का शौक और एक लीडर की लीडरशिप में अपने आप को मुतमईन करने का शौक, ये चीज़ें ही उस गिरोह को नसीब होती हैं जिनको अल्लाह ऐसी बड़ी फतूहात देता है। खैर, बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इंतज़ाम के बाद शिमाल की जानिब कूच फरमाया। मंजिल तबूक थी लेकिन लश्कर बड़ा था, 30,000 मर्दाने जंगी थे। इससे पहले मुसलमानों का इतना बड़ा लश्कर कभी फराहम न हुआ था। नोट कीजिएगा, जब मुश्किल हालात है तो इतने लोग जमा हो गए। इसलिए मुसलमान हर चंद माल खर्च करने के बावजूद लश्कर को पूरी तरह तैयार न कर सके थे, बल्कि सवारी और तोशे की सख्त कमी थी। चुनाचे 18-18 आदमियों पर एक एक ऊंट था जिस पर ये लोग बारी बारी सवार होते थे। इस तरह खाने के लिए बसा अवकात दरख्तों की पत्तियां इस्तेमाल करनी पड़ती थी जिससे होंठों में वरम आ गया था। मजबूरन होंठों को किल्लत के बावजूद ज़िबा करना पड़ा ताकि इसके मैदे और आंतों के अंदर जमा शुदा पानी और तरी पी जा सके। इसलिए इसका नाम जैशे उसरत यानी तंगी का लश्कर पड़ गया। हम तो दीन के काम भी करते हुए तभी खुश रहते हैं जहाँ साथ साथ स्नैकिंग होती रहे, जहाँ बड़ी पुरतकल्लुफ दावत हो, जहाँ वन डिश हो, तुम ये बनाना मैं ये बनाऊंगी, खुशी खुशी हम लेकर आते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी ऐसे लश्कर भी होते हैं कि जहाँ दरख्तों के पत्ते खाने पड़े। पूछिए खुद से, क्या मैं उस जगह होती तो इस जैसे हसरत में खुशी से जाती? दरख्तों के पत्ते, तोशे की कमी, सवारी की कमी, और इतने बड़े लश्कर को, 30,000 लोगों को अगर वाकई एक खजूर दी जाए तो 30,000 खजूरें तो एक दिन में एक वक्त चली गई। आज मैं आप उस दिन की क्या कदर करते हैं, वक्त ना भी हो फिर भी इस पे बात करनी है। आज हमने अल्लाह के नबी के लाए हुए दीन को इतना सस्ता कर दिया, आपकी की हुई मेहनतों पे पानी फेर दिया। एक तरफ हमने बिदात के नाम पे इतना रिलैक्स और कह लीजिए कि रंग और रौनक वाला दीन बना लिया, खूब पंपी एंड ग्लैमरी दीन है, खूब अच्छी खुशबुओं की महफिलें हैं और चलिए अल्लाह के नबी को राज़ी कर जाएं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि हमने दुनिया के नाम पे ख्वाहिशों की चक्की में पिस कर दीन का हुलिया बिगाड़ दिया। बड़ी मेहनत से ये काफ़िला तैयार हुआ है, बड़ी मुश्किल से ये लोग बनते हैं। याद रखिए, जिनके सीनों में ईमान आ जाता है, जो कुरान पढ़कर, हदीस पढ़कर, सुन्नत पढ़कर अपने अंदर कुछ करने का जज्बा पाते हैं ना, ये बड़े कीमती लोग होते हैं। फिर इनको ऐसे तंगियों के लश्करों में ले जाया जाए, ये शिकवा भी नहीं करते, ये गिला भी नहीं करते, ये अपने चेहरों से महसूस भी नहीं होने देते कि हम इस वक्त भूखे हैं, हमने खाया नहीं कुछ। उनको तो मकसद प्यारा होता है और इस मकसद की राह में वो किस तरह से चलते हैं। आज थोड़ा सा इसके बाद ज़रूर अकेले में बैठकर सोचिएगा और हर बंदा अपने आप पे देखे। हम तो इतने ज़्यादा एहतमाम में पड़ जाते हैं कभी कभी, इतनी दूर की सोच लेते हैं, बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा। सबको बता दीजिए, सबके साथ करना है ये काम। हम चंद लोग ये काम नहीं कर सकेंगे तो फिर आने वाली नस्लें किसको बुरा कहें, उनको हक है। तो अल्लाह के नबी और सहाबा को ये सब दिख रहा था, इसके बावजूद मेहनत की। तबूक की राह में लश्कर का गुजर हिजर यानी दियारे समूत से हुआ। समूत वो कौम थी जिसने वादी उल कुरा के अंदर चट्टाने तराश तराश कर मकानात बनाए थे। सहाबा कराम ने वहाँ के कुएं से पानी ले लिया था, लेकिन जब चलने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहाँ का पानी ना पीना और इससे नमाज के लिए वुजू ना करना, और जो आटा तुम लोगों ने गूंद रखा है इसे जानवरों को खिला दो, खुद ना खाओ। आपने ये भी हुक्म दिया कि लोग इस कुएं से पानी लें जिससे सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी लिया करती थी। सही बुखारी और मुस्लिम जिनमें रिवायत सहीन इब्ने उमर रावी हैं, कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजर यानी दियारे समूत से गुजरे तो फरमाए, इन जालिमों की जाय सुकूनत में दाखिल ना होना कि कहीं तुम पर भी वही मुसीबत ना पड़े जो इन पर आई थी। हाँ मगर होते हुए फिर आपने अपना सर ढांका और तेजी से चलकर वादी पार कर गए। यहाँ से क्या पता चलता है کہ عذاب رسیدہ بستیوں سے جلدی سے گزر جانا چاہیے. آج بھی وادی میسر سے گزرتے ہوئے حجاج کرام کو جلدی سے گزرنے کا حکم ہے. کہاں موئنجو دڑو اور ہڑپا میں ٹرپس لے کر جائیں؟ دوسری بات, آپ دیکھیے کہ اس وقت اتنی تنگی تھی, لیکن آپ نے وہ آٹا کھانا اور کھلانا پسند نہیں کیا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان حلال اور حرام کے معاملے میں کتنا سنجیدہ ہوتا ہے. اور نہ اس کنویں سے پانی لینا پسند کیا. تو اللہ کو ایسی بستیاں, ایسے لوگ, ایسی جگہ نہیں پسند جہاں سے لوگ اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ گزرے اور اللہ کے عذابوں کا شکار ہوئے. راستے میں لشکر کو پانی کی سخت ضرورت پڑی, حتیٰ کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا. آپ نے اللہ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیا, بارش ہوئی, لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور ضرورت کا پانی لاد بھی لیا. نبی کی دعا سے بارش ہو گئی, اللہ نے غیب سے انتظام کیا. لکھیے ایک جملہ, جب آپ سچے دل سے اللہ کے راستوں میں نکلتے ہیں دو طرح کی مدد آتی ہے, ایک ہے من حیث لا یحتسب اور ایک ہے من حیث یحتسب. وہ جگہ جہاں سے آپ گمان کرتے تھے اور ایک وہ جگہ ہوتی جہاں سے آپ گمان نہیں کرتے تھے. عموماً ہم انسانی سہاروں کو سامنے رکھتے ہوئے کام شروع کرتے ہیں, یہ اتنی مدد کر دے گا, یہ کر دے گا, یہ اتنے یہ کرے. مثال ہے کوئی مالی پروجیکٹ ہو اور منی کی ضرورت ہو, ہم سوچتے ہیں فلاں اتنے دے دے گا, فلاں اتنے دے گا, فلاں اتنے دے گا. یہ ہے من حیث یحتسب. آپ نے خود سے ازمپشن کی, آپ کو لگا ہاں ان کا اتنے اچھے حالات ہیں, یہ اتنے. یہ تو آپ کی ازمپشن ہوتی ہے, آپ ایک فگر کرتے ہیں ہاں اتنے تو ہم جمع کر لیں گے. لیکن یاد رکھیے اللہ کے راستے کا ہر پروجیکٹ من حیث لا یحتسب سے پورا ہوتا ہے. لکھ کے رکھ لیجئے دل کی تختیوں پہ, جب جہاں اس اصول کو ڈالیں گے دیکھیے گا 100% سمجھ جائیں گے. ہمیشہ اللہ کے دیے سے پوری ہوتی ہے, اور اللہ وہاں سے مدد لاتا ہے جہاں سے امید نہیں ہوتی. اللہ ان سے کام لیتا ہے جن کو کبھی آپ نے کاؤنٹ نہیں کیا ہوتا. اللہ وہاں سے مال کا اہتمام اور انتظام کروا دیتا ہے جہاں سے کبھی آپ کے تصور میں بھی نہیں آیا ہوتا. تو بس آپ چھوٹے چھوٹے کام اپنے حساب سے کیا کریں, اور باقی بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ سے کہا کریں, اللہ تعالیٰ یہ ہے میرے ہاتھ میں, یہ اتنا ہی کر سکتی ہوں, باقی تو جان تیرے کام, مجھے نہیں پتا. آپ دیکھیں ایک بچہ بھی ماں باپ سے اگر اس طرح کی بات کرے نا, تھوڑے سے پیسے لے کے آئے, باپ کو ترس آتا ہے, کہتا اچھا لاؤ تم یہ دو باقی میں ڈال دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مثال بھی نہیں ہے. مت گھبرایا کریں, مت ڈرا کرے, کیسے ہوگا, مجھے کیا لگے کیسے ہوگا, جس کا کام وہ جانے وہ کر دے گا. اور چل پڑا کریں, بسم اللہ کہہ کر نکل پڑا کریں, آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے مدد آئے گی جہاں تک آپ کا ایمان ہوگا. لکھ لیجئے النصر مال ایمان, ایمان کے ساتھ مشروط ہے مدد. تھوڑے ایمان کے ساتھ تھوڑی مدد, زیادہ ایمان کے ساتھ زیادہ مدد ہوتی ہے. خیر, پھر جب تبوک کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کل انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے, لیکن چاشت سے پہلے نہیں پہنچو گے, لہذا جو شخص وہاں پہنچے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں آ جاؤں. دیکھیے کیسے تربیت ساتھ ساتھ ہے, سفر میں بہت تربیت ہوتی ہے, ساتھیوں کی باتیں, بات کا انداز, چلنے کا اور بہت کچھ. اور اللہ کے نبی کبھی بھی ایون جنگوں کے دوران بھی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ موقوف نہیں کرتے تھے. خیر ایسے ہی ہوا. حضرت معاذ کا بیان ہے کہ جب ہم لوگ پہنچے تو وہاں دو آدمی پہلے ہی پہنچ چکے تھے, چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا تم دونوں نے اس کے پانی کو ہاتھ لگایا؟ انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے ان دونوں سے جو کچھ اللہ نے چاہا فرمایا, پھر چشمے سے چلو کے ذریعے تھوڑا تھوڑا پانی نکالا یہاں تک کہ قدرے جمع ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا چہرہ اور ہاتھ دھویا اور اسے چشمے میں انڈیل دیا. اس کے بعد چشمے سے خوب پانی آیا, صحابہ کرام نے سیر ہو کر پانی پیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ, اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس مقام کو باغات سے ہرا بھرا دیکھو گے. دیکھیے معجزات بھی ساتھ ساتھ ہیں, کیسے اللہ کے نبی کے بچے ہوئے پانی سے چشمے میں پانی آ گیا تو آپ کے چشمے سوکھے, نبی کا چشمہ گیلا. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ ایسے رحمت بنا کر اپنے ساتھیوں میں رکھتا تھا کہ جس کو آج آپ کہتے ہیں کہ مٹی میں ہاتھ ڈالیں تو سونا بنے. اور اللہ کے نبی کے یہ معجزات آپ کو بہت سارے سفروں میں اور خاص طور پہ جنگوں میں دکھیں گے. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ خوشخبریاں, معاذ کو پہلے سے بتا دیا اور واقعی پھر بعد میں ایسا ہوا, تو زبان نبوت سے جو بات نکل جاتی ہے نا وہ خوشخبری بن جاتی ہے. راستے ہی میں یا تبوک پہنچ کر, دونوں میں اختلاف ہے یعنی کانٹراڈکشن ہے, کچھ کہتے ہیں ابھی راستے میں تھے, کچھ کہتے ہیں تبوک پہنچ چکے تھے. आपने फरमाया, आज रात तुम पर सख्त आंधी चलेगी, लिहाजा कोई ना उठे, और जिसके पास ऊँट हो वो इसकी रस्सी मजबूती से बांध दे। चुनाचे सख्त आंधी चली, एक शख्स खड़ा हो गया तो आंधी ने इसे उड़ाकर ती की दो पहाड़ियों के पास फेंक दिया। ती एक जगह का नाम है। रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप जोहर और असर की नमाज़ें इकट्ठी और मगरिब और ईशा की नमाज़ें इकट्ठी पढ़ते रहे। जमाए तकदीम भी करते थे और जमाए ताखीर भी। जमाए तकदीम का मतलब यह है कि जोहर और असर दोनों जोहर के वक्त में और मगरिब और ईशा दोनों मगरिब के वक्त में पढ़ी जाएँ, और जमाए ताखीर का मतलब यह है कि जोहर और असर दोनों असर के वक्त में और मगरिब और ईशा दोनों ईशा के वक्त में पढ़ी जाएँ। क्या देखिए, रास्ते के अंदर नमाजों में भी सहूलत हो गई, चलते जो जा रहे थे, और ये जो आंधी की खबर थी ये आपको अल्लाह की तरफ से इशारे होते थे, और बिल्कुल फिर वैसे ही है। इससे एक बहुत ही अमल की बात लिखी है। हमारे वालिद भी अक्सर यहाँ के मिसाल दिया करते थे कि जब सहराओं में रेत का तूफान आता है तो वही लोमड़ी और वही जानवर बचता है जो अपना सर जमीन में धंसा दे। यानी मुश्किल हालात में अकड़ अकड़ के नहीं रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा फन्नेहा बन के अपने ऊपर लेके देखे कौन है जो मुझे रोकता है, नहीं करिए। आप दबिए, ऐसे वक्त में छुप जाइए। जब फितने होते हैं तो बहुत उभर उभर कर बाहर आने की ज़रूरत ही नहीं होती। और इसी तरह आप देखिए कि आपने कहा कि ऊँट की रस्सी बांध दे, और बाकी जो एक शख्स खड़ा हुआ तो ये कौन था? रसूल की बात का मुनकर, एतबार नहीं किया, कहा देखता हूँ क्या होता है, तो पहाड़ों में गिर गया। तो कभी भी ऐसा काम ना कीजिए जो सुन्नत से हटा हुआ हो। फिर इससे पता चलता है कि सफ़र में नमाजें जमा की जा सकती हैं, पहले भी वक्त से और बाद में भी, और ये सहूलतें हैं ताकि जिस काम के लिए गए वो काम आसानी से हो जाए। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को 420 सवारों का रिसाला देकर, रिसाला के एक छोटा सा दस्ता, दूमतुल जुंदल के हाकिम उकैदर के पास भेजा और फरमाया, तुम इसे नील गाय का शिकार करते हुए पाओगे। ये भी देखिए, ज़माने नबूवत से वक्त से पहले खबर मिल गई। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ तशरीफ़ ले गए। जब इतने फासले पर रह के कि कला साफ नज़र आ रहा था तो अचानक एक नील गाय निकली और कले के दरवाजे पर सींग रगड़ने लगी। उकैदर इसके शिकार को निकला, चांदनी रात थी। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु और इनके सवारों ने उसे जा लिया और गिरफ्तार करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया। आपने इसकी जान बख्शी की और 2,000 ऊँट, 800 गुलाम, 400 ज़िरे और 400 नेज़े देने की शर्त पर मुसालहत फरमाई। इसने जिज़िया भी देने का इकरार किया। चुनाचे आपने इससे यखना समेत दूमा, तबूक, ईला और तैमा की शरायत के मुताबिक मामला तय किया। इन हालात को देख कर वो कबाइल जो अब तक रूमियों के आलाकार बने हुए थे, यानी उनके हेल्पर थे, समझ गए कि अब अपने पुराने सरपरस्तों पर एतमाद करने का वक्त ख़त्म हो चुका है, इसलिए वो भी मुसलमानों के हिमायती बन गए। नोट कीजिए, कुछ लोग आपकी कुछ कारकर्दगी देखना चाहते हैं फिर आपके पास आते हैं। उनको डर होता है कहीं हम नए नए नाम के साथ, नए गिरोह के साथ मिले और हार गए, शिकस्त पा गए तो क्या होगा, इसलिए वो पिछलों को नहीं छोड़ते। लेकिन जब उनके दिलों पे आपकी चीज़ों का रोब आने लगता है और वो अंदर से आपसे इम्प्रेस हो चुके होते हैं, मरगूब हो चुके होते हैं, तो एक एक करके फिर वो आपके साथ ही बनने लगते हैं। इसी तरह इस्लामी हुकूमत की सरहदें वसी होकर बराह रास्त रूमी सरहद से जा मिली और रूमियों के आलाकारों का बड़ी हद तक खात्मा हुआ। ये याद कीजिए, अल्लाह के नबी किसी को किसी से तोड़ते नहीं थे, काटते नहीं थे, लेकिन आप चूँकि हक पे थे, सच पे थे, आपकी ज़िंदगी में जब ये सब कुछ हो रहा था तो लोग खुद ब खुद उसकी वजह से आपसे इम्प्रेस हो जाते थे। देखिए, काम अच्छा कीजिए, खुद ब खुद लोग मिलेंगे, और आप काम ख़राब कीजिए तो आपके अपने लोग भी आपको छोड़ जाएंगे। यही मिजाज है इस्लाम का। आज भी हमेशा अपने लिए ये ख्वाहिश और दुआ किया करें कि अल्लाह दूसरों को अपना बनाने वाले काम करवा हमसे, ये ना के एक करके हमारे अपने भी हमें छोड़ जाएं। यहाँ आप देख रहे हैं कि इनविजिबल किस्म का बेनिफिट हुआ। पहले सहाबा कराम अपना इम्तिहान दे के पास हो चुके थे, घर से निकलना ही तो मुहाल था। उसके बाद तो मौजे ही मौजे। आज भी अभी हम क्लास से आए, सुबह के गए होते हैं, इतना हम इंजॉय करते हैं सारा दिन। बाद में मीटिंग थी, फिर कुछ दिल की बातें शुरू हो गई, आप लोगों के साथ क्लास थी, तो मैं उनको ये कह रही थी कि ये मज़ा कितना है इसमें। हक तो बाद में है, हक गालिब हो, जो भी हो, सवाब हो, हमें मज़ा कितना आता है एक दूसरे के साथ, हम कितना इंजॉय करते हैं। तो साहबे करम भी ऐसे इंजॉय करते थे। जब आप और मैं कहते हैं हाय तबूक, हाय गर्मी, हाय खजूर, उनको नहीं पता लगता होगा, वरना जाते क्यों? क्योंकि इस रास्ते में अल्लाह इतना मगन कर देता है कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। आप कभी इस काम की लज्जत तो पा के देखें, आपको ये ऑनर इतना बड़ा टाइटल लगता है कि मैं अल्लाह के रास्ते में हूँ, मैं फी सबील अल्लाह हूँ, मैं अंसार अल्लाह हूँ, मैं अल्लाह के रास्ते में जिम्मेदार हूँ, अल्लाह ने मुझे इस प्रोजेक्ट का बड़ा बना दिया, अल्लाह ने मेरे साथ 10 लोगों की हिदायत जोड़ दी, मैं इनका सबक सुनूंगी, मैं इनका तर्जमा सुनूंगी, बस इसी में खोए रहते हैं। आज भी आप देखिए, जब आप बहुत जोश में होते हैं, खाने की भूख रहती है, शादी हो घर में, सारा दिन घर वाले तो खाते ही कुछ नहीं, शाम को याद आता है आज तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, उसको देख उसको देख, मेहमान आ गए, ये करना वो, ये है वो लज्जत। जब आप इस काम को एक मिशन बना के करते हैं, चोट भी पड़ती है। आप कहते हैं ना, बिलाल को कोयलों पर तकलीफ नहीं होती थी, नहीं होती, कोयलों पर जिस्म जलता था, दर्द नहीं होता था। इस रास्ते में पाँव में छाले पड़ते हैं, दर्द नहीं होता। इस रास्ते में पेट पे पत्थर बांधने पड़ते हैं, महसूस नहीं होता। और इस रास्ते में तबुक के सफर पे चलना पड़ता है, उतनी एनर्जी मिलती। यकीन कीजिए, जिस दिन ज्यादा काम, जिस दिन ज्यादा प्रोजेक्ट, उस दिन ज्यादा ईमान। आजमाइश आ जाए कोई, अल्लाह ना करे, उसमें और ईमान। आपको जगह छोड़नी पड़ती है उसकी चीज़ों में, और ईमान। तो जो घर बैठ गए, जो सुस्त हो गए, उनके कभी घुटनों में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, कभी टखनों में दर्द है, दुआ कीजिए जिंदगी के आखिरी दम तक इन थू से स्टिक रहें, जज्बों के साथ निकले, और वो लज्जत दूसरा नहीं पा सकता। ये वो ही जानता है जिसको ये लगी होती है। तो बहरहाल, यहाँ तक वहाँ कह लीजिए जाने का सफ़र था, वो तो आए ही नहीं। यहाँ ये भी नोट कीजिए, कितना खूबसूरत, खफीफ और लतीफ़ इशारा है आज के दौर के लोगों के लिए, आज के दौर के हुक्मरानों के लिए। आप डरेंगे, दूसरे और डराएंगे, और आप डराएंगे तो अगले दुबक जाएंगे। जो अल्लाह से डरता है, दूसरे सब उससे डरते हैं। अब देखिए ज़रा वापसी के सफ़र में क्या होता है। मदीना को वापसी, इस्लामी लश्कर तबूक से मुजफ्फर व मंसूर, यानी मुजफ्फर जफ़र से, जफ़र किसको कहते हैं, कामयाबी को, और मंसूर नसर से, नसर यंसुरु से। क्या पता चला कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी फतुहात की सूरत में वापस आया, कोई टक्कर ना हुई। इसको तो हाईलाइट कीजिएगा। हर अंदेशा जो आपको आज है ना, ज़रूरी नहीं पूरा हो। बस दफ़ा बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, हमारे तहफ़ुज़ात होते हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, कुछ भी नहीं होता। आज भी आप देखिए ज़िंदगी में, कभी कोई काम पीछे का, 10 साल 5 साल पीछे का सोचिए, कितने खदशे थे, कुछ भी तो नहीं हुआ। जब हो जाता है काम, सब ठीक हो जाता है। पहले इफ्स एंड बट्स, रिश्ता करना है, हाय ना करें, हाय वो लड़ाके हैं, हाय बेटी को ऐसे ना हो, हाय वो ऐसे वो ऐसे। जब हो जाता है, आज माशाल्लाह आपकी बेटी खुशबाश है उधर, आपको उनकी बेटी को बहू बना के लाना था, 100 बातें सोच रहे, ये ना वो ना, उसकी खाला उसकी पुप्पी, एक दफ़ा अल्लाह ने रिश्ता करा दिया, बिस्मिल्ला, कुछ भी तो नहीं होता। तो इस रास्ते में बहुत डराते हैं लोग आपको। एक नसीहत लिख लीजिए, कभी डरिएगा नहीं, बस अल्लाह से डरिए, अल्लाह बाकी काम आपके खुद ही करा देगा। और इस रास्ते में ऐसे ऐसे बड़े इम्तिहान आते हैं कि जुलजिलु जिलजालन शदीदा, हिला मारे गए, कांप गए, और ऐसे काम के अपने छोड़ जाते हैं साथ, दूसरों को आप क्या कहें, दूसरे मिलते जाते हैं, अपने छोड़ते जाते हैं। डोंट वरी, एक बात का अपने आप को यकीन दिलाए कि सही रास्ते पे हो, नियत ठीक है, तरीका नबी का। यानी देखिए, दो चीज़ें अमल की कबूलियत की, काना लिल्लाही, अल्लाह के लिए हो, लिल्लाहियत हो, और उसवे हसना के मुताबिक हो। अमल साले की दो ही शरायत हैं, करें अल्लाह के लिए और तरीका नबी का रखें, बस। फिर आप इधर उधर मत देखिए, नो लेफ्ट नो राइट, स्ट्रेट, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कोई टक्कर ही ना हुई। अल्लाह जंग के मामले में मोमिनीन के लिए काफ़ी हुआ, दुआ कीजिए अल्लाह आज मुसलमानों को काफ़ी हो जा। लेकिन शर्त वही कि ईमान वाला मोमिन, मुस्लिम नहीं मोमिन, और ईमान भी वो जो पहाड़ों को रास्ते से हटा दे। अलबत्ता रास्ते में एक जगह, एक घाटी के पास 12 मुनाफिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश की। इस वक्त आप इस घाटी से गुजर रहे थे, आपके साथ सिर्फ हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हो थे, जो ऊँटनी की नुकेल थामे हुए थे, और हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान थे, जो ऊँटनी हाँक रहे थे, यानी वही जो आपके हेल्पर्स थे रास्ते में, वही आपके साथ थे, बाकी सब लश्कर इधर उधर थे। बाकी सहाबा कराम दूर दराज वादी के नशेब से गुजर रहे थे। यानी कभी कभी सफ़र में ऐसा होता है ना कि साथ चलने वाले भी थोड़ा सा इधर से उधर हो जाते हैं, तो वही वक्त था, ये अल्लाह के नबी के साथ कह लीजिए कि कुछ ख़ास लोग थे जो आपके बहुत क्लोज सर्कट, आपके टेक केयर थे, आपका ख्याल रखने वाले थे, हज़ैफ़ा बिन यमान और अम्मार बिन जासिर थे, बाकी सहाबा दूर थे। इसलिए मुनाफिकीन ने इस मौके को अपने नापाक मकसद के लिए गनीमत समझा और आपकी तरफ कदम बढ़ाया। इधर आप और आपके दोनों साथी हसबे मामूल रास्ता तय कर रहे थे कि पीछे से इन मुनाफिकीन के कदमों की चापें सुनाई दीं। ये सब चेहरों पर ढाटा बांधे हुए थे और अब आप पर तकरीबन चढ़ ही आए थे कि आपने हज़रत हुज़ैफ़ा को इनकी जानिब भेजा। उन्होंने इनकी सवारियों के चेहरों पर अपनी एक ढाल से ज़र्ब लगाना चाही, जिससे अल्लाह ने इन्हें मरूब कर दिया और वो तेज़ी से भाग कर लोगों में जा मिले। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके नाम बताए और इनके इरादे से बाखबर किया। इसलिए हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाहु अन्हो को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राजदान कहते हैं, साहिबे सिर्रे रसूल, जैसे आप आज सेक्रेटरी कहते हैं ना, तो सीक्रेट्स रखने वाला शख्स। इस वाक्य से अल्लाह ताला का ये इरशाद कुरान पाक में है, वहम्मू बिमा लम यनालू, और उन्होंने इरादा किया उस काम का जिसे वो कर ना पाए। ज़रा सा रुकूँ, बहुत ही कड़वी बात है इसके अंदर, शायद जल्दी में आपने ना महसूस की हो। उस दौर के मुनाफिकीन भी तबूक के सफ़र तक होकर आए थे, नोट करिएगा, यानी उस दौर का मुनाफिक भी सिर्फ इस खौफ की वजह से कि मेरा पोल ना खुल जाए, इतने दूर के रास्ते तक साथ गया। लेकिन दिल का खोट देखिए, इतना बड़ा मोजज़ा देखकर, इतना बड़ा मार्का, इतना दुश्मनों पर रोब डालकर, अल्लाह के नबी के ज़रिए सहाबा का लश्कर वापस आ रहा है, इनके दिल फिर ना बदले, नबी को कत्ल करना चाहते हैं। और दूसरी बात इससे भी तकलीफ दे है कि अल्लाह के नबी के दौर आपको देखने वालों में भी कुछ मुनाफिक थे। आज की तो बात ना करूँ तो बेहतर है, बस अपने लिए दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा तहिर कल्बी मिनन निफाक वामली मिनर रिया वलिसानी मिनल कज़िब। अल्लाह निफाक को निकाल दे। देखिए कोई नहीं पता नमाज पढ़ने वाला भी मुनाफिक है कि नहीं, कोई नहीं पता दीन के काम करने वाला भी मुनाफिक है कि नहीं, और ये कौन पूछे, मैं अपने आप से पूछूं। मैं दावा करती हूँ ना कि मैं दीन के काम करती हूँ, मैं दूसरों को बुलाती हूँ, तो मुझे अपने दिल को देखना है। कभी कभी अल्लाह फासिकों से भी काम ले लेता है, और अल्लाह हमें ऐसे लोगों में ना करना, हमारे दिल साफ कर दे। कैसे दिल चाहगा उस प्यारे से चेहरे के ऊपर वार करने को, और उस खूबसूरत शख्सियत को कि जिससे गैर भी मोहब्बत करें और मरूब हों। ये निफाक कैसी बुरी चीज़ है, ये कैसा बुरा रोग है, कैसे लोगों को अपने प्यारे लीडर से बदगुमान कर देता है, असल में शैतान था। और आप देखिए कि मौका देखा तो गोया कि ऐसे लोग साथ इसलिए जाते हैं कि जहाँ मौका पड़ा हम बदनज़मी डाल देंगे, कुछ फितने उठा देंगे और फिर कुछ मुखबरियाँ भी कर लेंगे। और आप देखिए कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन्होंने हमला किया, तो आपको सबके नाम पता थे जो अल्लाह ने वही से बताए, फिर भी आपने सिर्फ एक को बताए, बाकियों को नहीं बताए। तो क्या पता चला, आज तसव्वुर भी ना कीजिए किसी के लिए कि वो मुनाफिक है, कभी किसी के लिए ऐसा जुमला ना सोचिए। सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को मुनाफिक कह सकते हैं जो उसका फिक्र है, तो वो है जो आईने में दिखता है, किसी के काम करने वाले के बारे में किसी दूसरे के लिए कभी ना सोचिए कि वो मुनाफिक है। आज हमें अपने सिवा सारे मुनाफिक लगते हैं, साहबा को तो अपना ही आप बुरा लगता था, दूसरे तो अच्छे ही लगते थे। तो बहरहाल खत्मे सफ़र पर जब दूर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना के नक़ूश दिखाई पड़े, तो आपने फरमाया, ये रहा ताबा, ताबा तैब से ताबा तीब, खूबसूरत खुशबू और प्यारी चीज़, ताब लकुम सूरत निसा के बिल्कुल शुरू में, वो औरतें जो तुम्हें अच्छे लगें, तिब न लकुम, मेहर की बात कुरान में आती है। और फरमा, ये रहा उहद, ये वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और जिससे हम मोहब्बत करते हैं। इधर मदीना में आपकी आमद की खबर पहुंची, तो औरतें बच्चे और बच्चियां बाहर निकल पड़ी और ज़बरदस्त एजाज के साथ लश्कर का इस्तकबाल करते हुए ये नगमा गुनगुनाया, तलव बद्रु अलैना मिन सनीयतिल वदा वजब शुक्रु अलैना मदा लिल्लाहि दाई। हम पर सनीयतुल विदा से 14वीं का चांद तुलू हुआ, जब तक पुकारने वाला अल्लाह को पुकारे हम पर शुक्र वाजिब है। सोचिएगा ज़रा सा, इस पे गौर कीजिएगा, अल्लाह के नबी का ऐसे मौके पर ये खूबसूरत जुमला, ये रहा ताबा, ये रहा उहद, ये घर वापस पहुंचने की खुशी होती है। सफ़र सफ़र है, घर घर है, और फिर इतनी कामयाबी बड़ी दी। जाने वक्त तो लोग सोच रहे थे एक भी वापस नहीं आएगा और किसी को भी कुछ नहीं हुआ। मज़े की बात देखिए, बहुत बड़ी बात है, कुछ भी तो नहीं हुआ। लोग यही कहते हैं ना, हाय मर जाएंगे, आए टक्कर ली तो दुश्मन तो बहुत बड़ा है। चलो थोड़ी सी अगर मुशक्कत हुई तो कोई बात नहीं, वजन घट गया, एक्सरसाइज हो गई, पसीना चला गया। तो दीन के रास्ते में जो फियर्स एंड डाउट्स होते हैं ना, अक्सर गलत होते हैं, वो शैतान डालता है। हम अपने को बहुत मुख्तार समझ होते हैं, देखा कितनी अक्लमंद हो, कितनी क्लेवर हो, कितनी जीरक हो। मुझे वक्त से पहले वो सूझ गया जो दूसरों को नहीं सूझा। नहीं, एक खास हद तक ठीक है, इससे ज़्यादा गलत है। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद तलाउ बद्रु अलैना, नबी को 14वीं का चांद कहा, बद्रे मुनीर, सनियतिल वदा जगह का नाम है। और क्या पता चला कि लीडर के आने का सुनकर खुशी से दिल खिल गया। और कहते हैं कि हम पर अल्लाह का शुक्र है, मा दाल दाइन, जब तक पुकारने वाला अल्लाह को पुकारे। इतना प्यारा वेलकम कौन किसी को कह सकता है जो उस वक्त अल्लाह के नबी के लिए बोला गया। बाद जगह यही चीज़ पीछे हम देख चुके हैं कि हिजरत के मौके पे थी, हमारे यहाँ यही मारूफ है। लेकिन दोनों अहादीस हैं, एक में बल्कि ज़ोफ़ है, एक सही दर्जे की है। हमें तो इन अशार को देख कर बस ये सोचना है कि मदीना वालों के दिल में अल्लाह के नबी की कितनी मोहब्बत डाल दी अल्लाह ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबुक के लिए रजब में रवाना हुए थे और वापस आए तो रमज़ान का महीना था। इस सफ़र में पूरे 50 रोज़ सरफ हुए, 20 दिन तबुक में और 30 दिन आमदोरफ्त में। ये आपकी हयात मुबारका का आखिरी गजवा था जिसमें आपने बनफ्स नफीस शिरकत फरमाई। नोट कीजिएगा, रजब में गए तो वापस रमज़ान में आए। 50 रोज़ कितने होते हैं, इमेजिन कीजिए, 10 दिन कम 2 महीने, जिसमें से 20 दिन तबूक में पड़ाव डाला और बाकी 1 महीने का सफ़र। आज सोच भी सकता है कोई? और अल्लाह करे कि हमें अपने ईमान को परखने की और अपने आप को देखने की तौफीक हो जाए। कैसे अल्लाह ताला ने इस सारे सफ़र को खूबसूरत बनाया था। अगला जो टॉपिक शुरू हो रहा है, इसको हम इंशाल्लाह अलग से इंजॉय करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि कल का सेशन जो हम सब के लिए कायना होगा, क्योंकि हम दीन के नाम पर बहुत सारी माजरतें करते हैं, बहुत सारे उज़र करते हैं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो हमें इस बात की तौफीक दे कि हम इससे बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा सकें, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। आप देखिए कि इन सारी चीज़ों को पढ़ते सुनते वक्त ईमान कितना बढ़ता है। तो आप सोचिए कि जो लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे, उनका ईमान कितना नहीं बढ़ा होगा, और कैसे अल्लाह ताला ने फिर उनके दिलों की बहार इसको बनाया होगा। और जितना रास्ते में निकलेंगे अल्लाह के, उतना ईमान बढ़ेगा। लिख लीजिए, जितने बड़े बड़े चैलेंजेस कबूल करेंगे उतना अल्लाह की रहमत होगी, और जितना आपकी हिम्मत छोटी होगी, जितना आप सोचेंगे हाय कैसे, वो कैसे, ये कैसे, उतना ज़्यादा आपको मुश्किल लगेगा। तो तौफीक मांगा करें कि मेरे मालिक तौफीक दे दे, तेरे रास्ते में अगर मैं निकलूं तो तू मुझे थाम के रखना, मुझे कभी ज़ाया ना करना, और मुझे बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों पे रखना। जज़ाकुमुल्लाह खैर। खानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।